मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज ये है कि मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं घर खरीदने के लिए। उतने पैसों में हज हो जाएगा, तो क्या मैं पहले हज करूं या घर खरीद सकता हूं मैं?
बहुत अहम सवाल, और इन्होंने गोया के कईयों की नुमाइंदगी एक तरह की ये की है। और यहाँ पे इन्होंने घर का कहा है, कुछ और भी अफराद साथ अटैच कर लेते हैं कि कईयों को शादी के मामलात भी होते हैं कि आगे जाकर शादी करनी है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो वो पैसे भी जमा करके रखते हैं। इस तरह कुछ ऐसे होते हैं कि गाड़ी उनको लेनी है तो वो गाड़ी के लिए पैसे जमा करके रखते हैं। तो आया ये हज वाला फरीज़ा इस सूरत में इनके साथ आएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज उस सूरत के अंदर लाजिम होगा जबकि दीगर शराइत के साथ साथ ये शख्स जो है वो माली एतबार से इस्तेआत रखता हो कि हज के आने जाने के, वहाँ रहने के अखराजात बर्दाश्त कर सके। और इस दौरान पीछे जिन अफराद का नान नफका इस पर लाजिम है, उन अफराद का नान नफका भी इसके पास हो कि वो दे कर जाए। अगर घर कोई शख्स ख़रीद लेता है और उसमें रिहाइश पज़ीर है तो ये तो घर उसका हाजत असलिया में है। गाड़ी ख़रीद ली और उसको इस्तेमाल कर रहा है तो हाजत असलिया के अंदर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर जो है वो ये काम करने हैं और उसके लिए पैसे जमा कर रहा है, तो पैसे इस वक्त जो है वो हाजत असलिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये पैसे हाजत असलिया से ज़ायद हैं। तो जब इसकी मालियत इतनी है कि हज के अखराजात को काफ़ी है, तो इस सूरत के अंदर इस शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। और न सिर्फ ये कि पैसे जमा कर रहा हो, इसकी कैफियत कुछ इस तरह भी हो सकती है कि कभी किसी शख्स के पास गाड़ी थी मिसाल के तौर पर, और वो गाड़ी उसके ज़ेर इस्तेमाल थी, लेकिन उसने हज के अय्याम में, कि जिन अय्याम में उसके मुल्क से हज के जो है वो फॉर्म वगैरह जमा होते हों, उन अय्याम में वो गाड़ी बेच दी और अब उसके पास कैश है, उसके पास उसका
सही रकम आ गई अब तो।
तो अब उसको आगे ख़रीदनी है, लेकिन इस वक्त जो है वो उसके पास कैश है, तो इस कैश की वजह से भी उसके ऊपर हज लाजिम हो जाएगा। तो लिहाजा इस बात का ख्याल करना ज़रूरी है कि हज जिसके ऊपर लाजिम हो जाए वो लाजमी तौर पर जो है वो पहले हज के फरीज़े को अदा करे। कि हज ना करने वाले के लिए बड़ी सख्त वईद हदीस पाक के अंदर आई कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया और हज ना किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी
अल्लाह
होकर मरे। तो हुजूर की गोया कि इस कदर सख्त जो है वो कलमात उसके बारे में है। तो हज एक ऐसा रुकन इस्लाम है कि जो कि ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ होता है, और इसके न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी और उखरवी सारे ही जो है वो फ़वाइद हैं। तो हज के मामले के अंदर इंसान को सबसे पहले फ़ौकियत और तरजीह हज को देनी चाहिए। कई लोग बच्चियों की शादियों की वजह से हज पर नहीं जाते, या और कुछ ना कुछ उनके जो है वो चीज़ें होती हैं जिनकी बुनियाद पर वो हज पर नहीं जा रहे होते। हालांकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अहादीस तय्यबा में ये भी है कि कोई शख्स अगर किसी दुनियावी चीज़ की वजह से हज पर नहीं जाएगा तो वो ये देखेगा कि लोग हज पर से वापस आ जाएंगे लेकिन उसका काम वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, वो
वो
काम
काम
भी
ही नहीं
नहीं
होगा।
होगा और उसका हज से भी जो है वो महरूमी होगी। तो लिहाजा अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह के घर पर जाना है, और मग़फ़िरतों की गोया के वहाँ पर बरसात हो रही होती है, बख्शिशों की बरसात हो रही होती है। तो हमें हज को हरगिज़ जो है वो, जिस पर फ़र्ज़ है उसे हरगिज़ जो है वो इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दीगर शराइत पाई जाएँ तो फ़ौरी तौर पर वो हज कर लें।
ठीक है, अब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे और उन पर भी ये टाइम पीरियड ऐसा गुजरा हुआ होगा, अमाउंट था, मालियत थी, सब कुछ था, लेकिन अब वो जिस काम के लिए था उस काम में लगा दिया।
जी
उन्होंने मकान का एक बनाया हुआ था कभी, अब मकान है तो अब मकान फौरन तो नहीं आता, या तो किस्तों की सूरत में कुछ प्लॉट लिए जाते हैं या पैसे खुद जमा करके लिए जाते हैं, तो ये हज का वक्त गुजरा हो तो अब क्या करें वो?
हज फ़र्ज़ था लेकिन हज नहीं किया, तो हज बहरहाल उसके ऊपर अब भी लाजिम है, उसको यह हज की अदायगी करने का ही हुक्म होगा। अगर माल मौजूद है तो उस माल के साथ जो है वो हज करे, और अगर माल मौजूद नहीं है, कर्ज़ ले सकता है और कर्ज़ की अदायगी की भी उसे उम्मीद है, तो इस सूरत में कर्ज़ लेकर जो है वो हज पर जाए, या फिर आखिर वक्त के अंदर حج بدل کی وصیت کرے. تو لہذا جس طرح گھر کے لیے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، جس طرح شادی کے لیے جمع کرتے ہیں، جس پر حج فرض ہو گیا اسے چاہیے اسی طرح اب اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے اور پیسے جوڑے تاکہ اپنا حج فرض جو ہے وہ ادا کر سکے. تو اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت بھی جو ہے وہ حج کے اخراجات برداشت کر کے جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیم میں نہیں آیا یا اس نے ڈالا ہی نہیں تھا، اس کو کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ تھی اور آج ہمارا مسئلہ سن کر اس کی توجہ اس طرف گئی ہے، تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت جو ہے وہ اپنے حج پہ جانے کے لیے کوششیں مکمل طور پر کرے تاکہ حج جو ہے وہ ادا